तारीख 7 जून दिन शुक्रवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत। दर्जनों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के आरोपों के बाद अफ्रीकी संघ ने सूडान को किया निलंबित।
We decide as council that in line with the relevant AU instruments, in particular the AU Constitutive Act, the PSC.
तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, TRS में हुए शामिल। राजस्थान में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग।
PM बनने के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कोई भी चुनाव में हारने और जीतने की। जो भाई किसी युवा को मुख्यमंत्री बनाओ जब पायलट है ना यार, और कौन होगा।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी। पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि जब तक सूडान में एक नागरिक सरकार स्थापित नहीं की जाती तब तक के लिए वो सूडान की सदस्यता निलंबित कर रहा है। अफ्रीकी संघ ने यह फैसला सूडान में प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद लिया है। दुबई पुलिस ने जानकारी दी है कि एक बस एक्सीडेंट में 17 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। गुरुवार शाम को 31 लोगों से भरी ये बस अलग अलग देशों के लोगों को लेकर जा रही थी और ये लोग ईद की छुट्टियां मनाकर ओमन से लौट रहे थे। मैक्सिको ने अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिले को रोकने के लिए ग्वाटेमाला से लगने वाली अपनी सीमा पर 6,000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। ये घोषणा इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने की है। अमरीका को मैक्सिको के सामान पर आयात शुल्क लगाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर मैक्सिको ने अमरीकी सीमा की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिले को नहीं रोका तो वो मैक्सिको पर 5% आयात शुल्क लगा देंगे। इस बीच मैक्सिको ने 20 से ज़्यादा संदिग्ध मानव तस्करों के बैंक अकाउंट्स सील कर दिए हैं। हांगकांग में हजारों वकीलों ने मौन मार्च निकाला। ये वकील सरकार की उस योजना का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत लोगों को चीन प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाएगी। दरअसल हांगकांग की सरकार प्रत्यर्पण कानून में संशोधन करना चाहती है। मौजूदा कानून के मुताबिक फिलहाल संदिग्धों को चीन नहीं भेजा जाता क्योंकि ऐसी चिंता जताई जाती है कि वहां उनका मुकदमा निष्पक्ष तरीके से नहीं चलेगा। प्रशासन का कहना है कि यह संशोधन जरूरी है ताकि हांगकांग को अपराधियों के लिए स्वर्ग बनने से रोका जा सके। मार्च में शामिल एल्विन योंग ने कहा,
This bill is so rushed to logical, no due process, no proper consultation whatsoever, and there's
बिल
no
में जल्दबाजी में संशोधन करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही, ना ही सही तरीके से सलाह मशविरा किया गया है और इस बिल में मानवाधिकारों की रक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ये थे मार्च में शामिल एक शख्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मनी की एक अदालत ने 85 मरीजों की हत्या करने वाले एक पूर्व नर्स को दोषी करार दिया है। वकीलों के मुताबिक नील्स होगल पीड़ितों को गलत दवा का इंजेक्शन लगा देते थे जिसके बाद वो अपने सहकर्मियों को दिखाने के लिए इलाज कर मरीजों को ठीक किया करते थे। मुकदमे के आखिरी दिन होगल्स ने पीड़ितों के परिवार वालों से माफ़ी मांगी। उन्हें उम्र कैद की दूसरी सज़ा हुई है। इससे पहले भी हत्या के एक मामले में उन्हें दोषी पाया गया था। बर्लिन में मौजूद एक BBC संवाददाता ने बताया कि इस मामले के सामने आने से जर्मनी के लोग हैरान हैं। अदालत के बाहर नील्स होगल की वकील ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला संभावित था। उन्होंने कहा,
auf mir Verurteilung plädiert. Also insofern ist das
पीड़ित पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की थी, इसलिए कोर्ट के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई है और इस फैसले से हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें चीजें शांत होने का इंतजार करना होगा। ये थे नील्स होगल की वकील के शब्द। पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के तेल टैंकरों पर हुए हमले के मामले की जांच में सामने आया है कि हमले के पीछे कोई देश हो सकता है। हालांकि जांच में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिका इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप लगाता रहा है। फलस्तीन के मंत्रियों की तनख्वाह चुपके से 67% बढ़ाए जाने की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनी सरकार की कैबिनेट की निंदा की है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। सूडान में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के आरोपों के बाद अफ्रीकी संघ ने सूडान को सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अफ्रीकी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सेना ने नागरिकों के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता हस्तांतरित नहीं की तो वो आगे की कार्रवाई करेगा। इस बीच अर्धसैनिक बल के दस्ते अभी भी पूरे सूडान में भारी तादाद में तैनात हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत कौर से।
सूडान के लोग डर के साए में जी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पूरे देश में भारी तादाद में तैनात अर्धसैनिक बल उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये वही रैपिड सपोर्ट फोर्स है जिस पर राजधानी खार्तूम में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। सूडान में इस वक्त सेना का शासन है और ये प्रदर्शनकारी सत्ता नागरिक प्रशासन को सौंपे जाने की मांग कर रहे थे। देश के माहौल को देखते हुए अफ्रीकी संघ ने सूडान की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है और कहा है कि जब तक सेना सत्ता नागरिकों के नेतृत्व वाली सरकार को नहीं सौंपती तब तक सूडान की सदस्यता निलंबित रहेगी। अफ्रीकी संघ के प्रमुख डॉक्टर पैट्रिक कैपुआ ने कहा,
We decide as council that in line with the relevant AU instruments, in particular,
लोकतंत्र चुनाव और शासन पर अफ्रीकन चार्टर और पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल प्रोटोकॉल के आधार पर हमने फैसला किया कि जब तक सत्ता नागरिकों के नेतृत्व वाली सरकार को नहीं सौंपी जाती तब तक रिपब्लिक ऑफ सूडान अफ्रीकी संघ की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएगा। सूडान को मौजूदा संकट से निकालने के लिए बस यही रास्ता बचा था। ये थे अफ्रीकी संघ के प्रमुख पैट्रिक कैपुआ के शब्द। इस बीच सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों के हमले में 61 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। हिंसा में हुई मौतों पर यह अब तक का पहला आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन विपक्ष ने इससे कई ज्यादा मौतें होने का दावा किया है। एक विपक्षी कार्यकर्ता हाफिज मोहम्मद ने बीबीसी से कहा,
The regime realized that they have committed grave mistakes and now they're trying to come out with some excuses.
सरकार ने माना कि उन्होंने बहुत गंभीर गलती की है और अब वो इस पर सफाई दे रहे हैं। सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है वो गलत है क्योंकि अब भी कई लोग लापता हैं। असल में हमें संख्या पता ही नहीं है, ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये थे विपक्ष के कार्यकर्ता के शब्द। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग बदलाव लाना चाहते थे और इसके लिए वो मरने तक के लिए तैयार थे।
These people have turned Sudan into graveyard instead of the country which has wealth of resources.
सूडान संसाधनों के खजाने वाला देश है, लेकिन इन लोगों ने सूडान को कब्रिस्तान में बदल दिया। लोगों को दिख रहा था कि कुछ चोर संसाधनों को चुरा रहे हैं और सूडान गरीबी में जा रहा है। इनमें से कुछ लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए और बदलाव लाने के लिए मरने तक के लिए तैयार हो गए। ये थे विपक्षी कार्यकर्ता हाफिज मोहम्मद के शब्द। इस बीच अमनेस्टी इंटरनेशनल ने सुरक्षा बलों को सड़कों से हटाने की मांग की है और मौतों को बर्बर रक्तपात बताया है। संस्था का कहना है कि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
तो जैसा कि आपने सुना, दर्जनों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के आरोपों के बाद अफ्रीकी संघ ने सूडान को किया निलंबित। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी टीआरएस में शामिल हो गए। इन सभी 12 विधायकों ने कल विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात भी की। आखिरकार क्या वजह है कि तेलंगाना के भीतर अचानक से कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक दल बदलने के लिए तैयार हो गए, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने संपर्क किया हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
सबसे पहली मुख्य बात यह है कि ये जो दल बदली हुई है ये रातों रात नहीं हुई है। ये गत नवंबर में जब से चुनाव हुआ और दिसंबर में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें जीती थी और गत 4-5 महीने में 11 कांग्रेस विधायकों ने दल बदला और वो तेलंगाना राष्ट्र समिति में चले गए। आज मुख्य बात ये हुई है कि 12वें विधायक ने पार्टी बदली है और कांग्रेस से वो टीआरएस में शामिल हुए। ये मुख्य बात इसलिए है कि अगर इसको एक कानूनी रूप से जो दल बदलू कानून है उसके अंतर्गत कोई भी दल अगर उसके दो तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जो कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं उत्तम कुमार रेड्डी, वो विधानसभा के सदस्य तो है ही, अभी वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं। तो लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। इससे कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या थी वो घट के 18 हो गई है, और दो तिहाई का मतलब होता है 12। पहले 11 लोग जा चुके थे, आज 12वें सदस्य भी टीआरएस में चले गए, जिससे दो तिहाई सदस्यों की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। अब कानूनन कांग्रेस पार्टी के ये जो बागी ग्रुप है ये अपने आप को टीआरएस में विलय कर सकता है।
कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका रहेगा इतने सारे विधायकों का एक साथ दल बदल देना?
ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि जो विपक्ष दल का जो नेता है उसका दर्जा कांग्रेस के एक नेता है मल्लू भट्टी विक्रमार्का उनके पास था। अब जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस के पास केवल 6 सदस्य रह गए विधानसभा में तो उनको ये दर्जा नहीं मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी अब विपक्षी दल नहीं रहेगी विधानसभा के अंदर। विपक्ष में सबसे बड़े दल का दर्जा वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलेगा जिसके पास 7 सदस्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ा धक्का है, और इसको लेके जो 3-4 बड़े नेता हैं कांग्रेस के धरने पे बैठे हैं विधानसभा भवन के अंदर, और उनकी मांग है कि स्पीकर जो है वो उनसे मिले, लेकिन स्पीकर ने उनको ये कहा है कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, जबकि उन्होंने भेंट की थी उन 12 कांग्रेसी विधायकों से जो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं।
क्या वजह हम माने कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या असंतोष उनके भीतर था, कोई वजह किसी ने कोई बताई हो?
नहीं, किसी ने भी कोई ये वजह नहीं बताई कि वो पार्टी से नाखुश है। उनका यही कहना है कि उनको अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है, और अगर वो टीआरएस में चले जाते हैं तो ये विकास को वो आश्वासित कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अगर जनता की इच्छा ये थी कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति में जाएं तो फिर कांग्रेस को उन्होंने वोट क्यों दिया? असल कहानी ये मानी जाती है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति और उसके नेतृत्व ने ये पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन यहां जो प्रेक्षक कह रहे हैं वो बड़ी अहम बात ये है कि जो विपक्ष की जगह है वो चूंकि खाली हो रही है और कांग्रेस कमजोर पड़ रही है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।
हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक विश्लेषण कर रहे थे। कांग्रेस की दिक्कतें सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी हैं। हाल ही में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में अपने सबसे वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक अलग अलग तबकों से अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। लोकसभा चुनाव की सभी सीटें गंवाने के बाद ये आवाजें और बुलंद हो गई हैं। ताज़ा आवाज विधायक पृथ्वीराज मीणा की उठी है, जिन्होंने सचिन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
राज्य में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता हतोत्साहित है और नेता पद और प्रतिष्ठानों की लड़ाई में लगे हुए हैं। पार्टी नेतृत्व ने एकता का पाठ पढ़ाया, मगर कांग्रेस यहाँ साफ साफ दो भागों में बटी दिखती है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का खेमा है। कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज मीणा ने हार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताया और नेतृत्व परिवर्तन की मांग की।
क्या होता है, सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कोई भी चुनाव में हारने और जीतने की। पायलट की पैरवी नहीं की मैंने तो, कुछ युवा की भाई, किसी युवा को मुख्यमंत्री बनाओ जब पायलट है ना यार, और कौन होगा?
विधायक मीणा को पायलट का करीबी माना जाता है। विधायक इस विद्रोही स्वर से पार्टी हरकत में आई और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मीणा से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन बंद मिला। इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली, तब भी उसकी जीत के श्रेय को लेकर होड़ मची रही, पर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कोई भी नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सियासी पंडित कहते हैं कि कांग्रेस ने हार से कोई सबक नहीं सीखा है। स्थानीय पत्रकार अवधेश आकोदिया कहते हैं,
कांग्रेस को चाहिए था कि उस हार का मंथन करती, कारण जानती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उल्टा जो स्थान है, आपसी गुटबाजी है, बयानबाजी है, वो देखने को ज्यादा मिली है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी हार से कोई सबक लिया है। उल्टा जो गुटबाजी है वो और उभर कर सामने आ गई है।
देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस का कभी बड़ा वजूद था, अब उसकी सत्ता और सियासत का दायरा छोटा हो गया है। लेकिन इस छोटी सी दुनिया में भी पार्टी का हर नेता अपने लिए सबसे बड़ा और ऊंचा मकाम चाहता है। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
उधर पंजाब से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और स्टार नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी लगातार देखने को मिलती जा रही है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्रालय में फेरबदल किया, साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में सिद्धू शामिल नहीं हुए। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच चल रही रस्साकशी पर अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस ने चाहे 13 में से 8 सीटें जीत ली, लेकिन बठिंडा की सीट हारने का ठीकरा नवजोत सिंह सिद्धू पर फोड़ा गया, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग बदल डाला। सिद्धू को स्थानीय न्याय विभाग से हटाकर उन्हें बिजली मंत्री बनाया गया है। सिद्धू ने पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में जाना गवारा न समझा और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की समानांतर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें उन्होंने कैप्टन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। लोकसभा चुनाव के दौरान ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को नॉन परफॉर्मर मंत्री कह दिया था और सिद्धू तब से ही बैकफुट पर नजर आ रहे थे। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के मसले पर अपने विचार रखते हुए सीनियर पत्रकार नरेंद्र जगा कहते हैं,
जो पंजाब विधानसभा चुनाव है उससे पहले ही ये टकराव नजर आने लगा था। ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया था कि मेरी नजर से ये बंदा आता तो मैं इसको कभी कांग्रेस में आने ही न देता। तो ऐसे बयानों से तभी ये बातें लगने लगी थी कि चिंगारी है जो धीरे धीरे जरूर बढ़ेगी।
जबकि सिद्धू का कहना है कि हार के लिए वे अकेले जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना था,
सिद्धू तो ठीकरा फोड़ना बड़ा सौखा है, दो बंदे खड़े करके कह देना जी बठिंडा सिद्धू करके हार गए। इन्हों ये पूछो ना भी बठिंडा 40 साल च जो बादल सामने सी।
अब सिद्धू चाहे जो भी कहें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह जतला दिया है कि पंजाब के कैप्टन वो ही हैं, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू अपने रिश्ते कितने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीक बतलाए। बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन अमृतसर से।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
लोकसभा चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक और अब नतीजों के बाद भी पश्चिम बंगाल का राजनीतिक गलियारा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी चुनावी हिंसा तो कभी ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की आपसी बयानबाजी। अब पश्चिम बंगाल के चुनावी गलियारों में एक और व्यक्ति ने दस्तक दी है, ये हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत की रणनीति बनाने वाले और हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का साथ देने वाले प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं। आखिर ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों महसूस हुई, यही सवाल किया बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने कोलकाता में मौजूद प्रभाकर मणि तिवारी से।
प्रशांत किशोर आज आए थे कोलकाता तो ममता बनर्जी के साथ लगभग 2 घंटे तक उनकी बैठक हुई और उस दौरान ममता के भतीजे और जो टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी वो भी मौजूद थे। तो माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने ही इसमें पहल की है प्रशांत को यहाँ लाने में। और दूसरी बात है कि जो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी का उन्होंने कैंपेन संभाला था प्रशांत किशोर ने, तो उनको भारी कामयाबी मिली। इसके पहले अमरिंदर सिंह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का संभाला था, नीतीश कुमार का संभाला था और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभाला था। तो ममता को अब जो लोकसभा चुनाव में झटके लगे हैं बीजेपी की ओर से, इसके बाद वे एक साथ बीजेपी को रोकने के लिए कई पहलुओं पर एक साथ काम कर रही हैं, तो प्रशांत किशोर का आना भी इसी सिलसिले की ताजा कड़ी है।
प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो जेडीयू का हिस्सा बने थे और उसके बाद अब ममता के साथ आने पर उनके खुद के भविष्य के लिए किस तरह के संकेत हैं?
हाल के दिनों में जेडीयू और नीतीश कुमार से भी प्रशांत किशोर की दूरी बनने लगी थी। कई बार उन्होंने सीधा इसका संकेत भी दिया था। पहले तो नंबर 2 माने जाते थे जब जेडीयू में गए थे, लेकिन उसके बाद दूरियां बढ़ने लगी थी। तो अब हाल में उन्होंने आंध्र में जगन मोहन रेड्डी का कैंपेन संभाला और फिर अब ममता का संभाल रहे हैं। तो इससे लगता है कि प्रशांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब धीरे धीरे मुड़ रही है अपने मूल काम की ओर, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के कैंपेनिंग से शुरू किया था, तो फिर अब आ रहे हैं मूल काम की ओर। और तो ममता को भी जरूरत थी ऐसे एक मजबूत रणनीतिकार की।
प्रशांत किशोर को एक तरह से माना जाता है कि वो इमेज बिल्डर भी हैं, जो भी राजनेता उनके साथ जुड़ता है या वो जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी एक तरह की छवि वो बनाने में कामयाब हो पाते हैं। ममता बनर्जी को भी क्या अपनी छवि बनाने की चिंता सताने लगी है ऐसा माना जाए अब?
हाँ, जाहिर है ममता ने जो रणनीति बनाई थी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करके और जो दिल्ली का सपना देखा था, तो उनको बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से एक भारी झटका तो लगा ही है। तो उनको भी अब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि गड़बड़ है और इसे सुधारना जरूरी है।
प्रभाकर मणि तिवारी विश्लेषण कर रहे थे ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर के आने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन के बाद अब अपने विदेश दौरों की शुरुआत करने वाले हैं। शनिवार यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले विदेश दौरे के तहत मालदीव जाएंगे। सार्क समूह का सदस्य देश मालदीव आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना तैयार है, बता रहे हैं मालदीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं नवीन नेगी।
देखिए, मालदीव में पिछले दो दिन से जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम हो और हम जब मालदीव में लैंड किए थे तो यहाँ पर हमें एयरपोर्ट पे भारतीय वायुसेना का जो AN-32 मालवाहक जहाज है, जो इन दिनों काफी चर्चा में भी है क्योंकि अभी लापता हुआ दूसरी बार पिछले दो सालों में, वो दिखाई दिया। उसमें बहुत ज्यादा हेवी सिक्योरिटी इक्विपमेंट, SPG कमांडोज और तमाम तरह की सुरक्षा तैयारियां हैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट के लिए। दूसरी बात जो सबसे अहम है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में, वो ये है कि वो माले में नहीं रुक रहे हैं जो कि राजधानी है मालदीव की। वो माले से थोड़ी दूर एक द्वीप है, वहाँ पर इस बार उनका डेरा है, वो आइलैंड रिजॉर्ट है जहाँ पर वो और पूरा भारतीय कंटिंजेंट रुकेगा। तीसरी बात ये कि प्रधानमंत्री के साथ इस बार दो बड़े कद वाले मंत्री आ रहे हैं, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसका मतलब ये है कि ये यात्रा पर पूरा फोकस है भारत सरकार का और इस यात्रा पर आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में प्रधानमंत्री कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। राजनीतिक तौर पर और स्ट्रेटेजिक तौर पर जो बहुत क्रूशल रहेगा, जब प्रधानमंत्री शनिवार की शाम 6 बजे के आसपास मालदीव की संसद, जिसे मजलिस कहते हैं, उसको संबोधित करेंगे। और सबसे आखिरी बात यह कि भारत और मालदीव जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ से निपटने के लिए एक समझौता करने की कगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि वो समझौता एक बार साइन कर लिया जाएगा, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को लीगल असिस्टेंस यानी कानूनी मदद देंगे।
मालदीव को चुनने की आखिर क्या वजह रही पहले विदेशी दौरे के तौर पे?
प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब शपथ ग्रहण ली थी पहले अपने टेन्योर में, तो उस वक्त सार्क के मुल्कों को बुलाया गया था जिसमें मालदीव शामिल था। इस बार बिम्स्टेक के देशों को बुलाया गया जिसमें थाईलैंड और म्यांमार जैसे मुल्क थे, तो मालदीव उसमें शामिल नहीं था। लेकिन सामरिक तौर पर मालदीव की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि कहीं ऐसा न हो कि मालदीव अपने को लेफ्ट आउट महसूस करे इस पूरे जो नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी है उसके तहत, तो इसलिए ये यात्रा चुनी गई है।
जो भारतीय हैं मालदीव में रहने वाले, उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी, वो कितने उत्साहित दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव आने पे?
इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोगों में जो भारतीय मूल के हैं खासतौर से, उनके इस बातचीत को लेकर काफी उत्साह है। कई लोग पूछ चुके हैं कि कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कब रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। उत्साह के साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चुनाव में जो मोदी की पार्टी थी यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन, उनके पास पिछली बार से ज्यादा सीटें क्यों आई, क्या वजह थी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं मालदीव में पिछले 1.5 दिनों से और लगता है कि अगले 3 दिन भी वैसे ही देने पड़ेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है मालदीव यात्रा और वहां पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। भारतीय वायुसेना की विमान AN-32 को लापता हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस विमान का कोई पता नहीं लगा है। इस विमान में 13 लोग सवार थे और इनके परिवारों की ओर से चिंता और फिक्र की खबरें सामने आ रही हैं। विमान की तलाश में भारत सरकार की अलग अलग टीमें जुटी हैं। आखिरकार कैसा चल रहा है ये अभियान और किन परेशानियों के चलते इस विमान को अब तक नहीं खोजा जा सका, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने बीबीसी में रक्षा मामलों के जानकार जुगल पुरोहित से बात की।
देखिए, अभी तक उस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना ने पहल की थी क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट था, उनके इलाके में था। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना का एक कंटिंजेंट है जो ज़मीनी सर्च कर रहा है। भारतीय सेना का, थल सेना का एक अनमैंड एरियल व्हीकल UAV जिसे कहते हैं, वो है। भारतीय वायुसेना के तो अलग अलग जहाज है ही, जैसे सुखोई है, C-130 है, कई अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी, जो भारतीय नौसेना है, उन्होंने भी अपना एक स्पेशलिस्ट सबमरीन हंटिंग जहाज, पनडुब्बी को जो ढूंढने वाला जहाज होता है, उसको भी उस इलाके में डिप्लॉय किया था। इसकी वजह ये थी कि वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी उस जगह पर लाना चाह रहे थे जिससे कि उस जो विमान अभी तक गुमशुदा है उसके बारे में कोई जानकारी मिले। आखिर में इसके अलावा इसरो की भी जो सैटेलाइट्स है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उस एयरक्राफ्ट का कोई सुराग मिल पाए।
ये बताएं कि आखिर क्या वजह है, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से अभी तक 4 दिन हो गए उस विमान का अभी तक कुछ अता पता नहीं लग पाया है।
देखिए, मैंने अभी तक वायुसेना के कई अफसरों से बात की जो कि इस सर्च में खुद जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि लोगों को एक बात समझने की जरूरत ये है कि ये जो इलाका है वो बहुत ही घने घने जंगल वाला इलाका है। जब तक आपको कोई डेब्री का निशान ना मिले, जैसे कि कहीं कोई डैमेज दिखा हो या फिर आपको कहीं से कोई आग का कोई धुआं निकलते दिखा हो, जो कि समय के हिसाब से धीरे धीरे वो निशान घटते जाएंगे, और क्योंकि वहां पर जंगल इतना घना है तो अगर कोई एक विमान भले ही हमें नजर आता हो कि N-32 बहुत बड़ा विमान है, लेकिन अगर आप जंगल के मुकाबले में उसको देखें तो एक बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा है वो। तो इसीलिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां पे एक तो पहाड़ी टेरेन है और आबादी आसपास कोई नहीं, तो ये भी नहीं कि किसी ने सुना हो या किसी ने कुछ देखा हो।
भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 को लापता हुए 4 दिन हो चुके हैं और इसको खोजने का काम अभी भी जारी है। कार्यक्रम में आज कार्यक्रम के अंत में आज अखबारों की समीक्षा करेंगे। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आज अखबारों में छपी हुई?
देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस उठा लेती हूँ। इस पे मुझे सबसे पहले जो एक तस्वीर दिख रही है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक लाइन में बैठे हैं और तीनों ही गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं,
सोच रहे हैं
जी। और ऊपर सुर्खी लगी है कि सब कुछ एक दिन में हुआ। सुबह राजनाथ सिंह को प्रमुख समितियों में नहीं रखा गया लेकिन रात तक उन्हें शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 8 समितियों का गठन किया था और इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सभी समितियों में जगह दी गई थी, लेकिन सिर्फ 2 समितियों में ही राजनाथ सिंह को रखा गया था।
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि संसदीय समिति यानी कि जो होती है ये किसी भी तंत्र को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और सारे जो नीतिगत मामले होते हैं अलग अलग विषयों के वो इन समितियों में निर्धारित होते हैं। और खबर यही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कमेटी बनाई थी उनमें पहले राजनाथ सिंह को 2 समितियों में रखा गया, बाद में 6 समिति में शामिल कर दिया गया और अमित शाह 8 समितियों में है
जी। और पहले कयास भी ये लगाए जा रहे थे कि राजनाथ सिंह का शायद कद या फिर जो उनका महत्व है सरकार में कम करने की कोशिश की गई है, और विवाद बढ़ने के बाद उन्हें 4 और समितियों में और कुल मिलाकर 6 समितियों में जोड़ लिया गया। और दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, कर्ज होंगे सस्ते, नगद ट्रांसफर मुफ्त। ये खबर बहुत से अखबारों में दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की अगर सुर्खी देखें तो लिखा है, विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए RBI ने ब्याज दरों में की कटौती। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इसी के साथ अब नया रेपो रेट 5.75% हो गया है। माना जा रहा है कि इसका फायदा बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा, जैसे लोन की EMI कम हो जाएगी। और
इससे भी जुड़ी एक खबर ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं यानी कि खाते से खाते में पैसा भेजते हैं तो इस पर जो शुल्क लगता था, जो अलग अलग बैंक शुल्क लगाते थे यानी कि NEFT करने में, RTGS करने में, वो शुल्क भी अब नहीं लगेगा
जी। ग्राहकों की जेब को राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पे लग रही है। और प्रज्ञा ठाकुर सुनवाई में नहीं जा सकती लेकिन कार्यक्रम के लिए अस्पताल से ली छुट्टी, ये खबर भी जनसत्ता अखबार में दिख रही है। BJP सांसद और मालेगांव धमाकों की अभियुक्त प्रज्ञा ठाकुर ने गुरुवार को ये कहते हुए मुंबई के ट्रायल कोर्ट में पेश होने की छूट मांगी थी कि वो ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन गुरुवार को ही वो भोपाल में दोपहर के वक्त एक कार्यक्रम में नजर आई और महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर माल्यार्पण वो कर रही थी, ये खबर दिख रही है।
और अब खेल समाचारों का जिक्र कर लें। वर्ल्ड कप के 10वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 15 रनों से हरा दिया है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मुकाबला खासा दिलचस्प रहा। ऑस्ट्रेलिया की जीत में मिशेल स्टार्क के 5 विकेटों का बड़ा योगदान रहा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 288 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 273 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। कार्यक्रम में से पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
BBC समाचार। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि जब तक सूडान में एक नागरिक सरकार स्थापित नहीं की जाती तब तक के लिए वो सूडान की सदस्यता निलंबित कर रहा है। दुबई पुलिस ने जानकारी दी है कि एक बस एक्सीडेंट में 17 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। मैक्सिको ने अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिले को रोकने के लिए ग्वाटेमाला से लगने वाली अपनी सीमा पर 6,000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। हांगकांग में हजारों वकीलों ने मौन मार्च निकाला। ये वकील सरकार की उस योजना का विरोध कर रहे थे जिसके तहत लोगों को चीन प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाएगी। पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के तेल टैंकरों पर हुए हमलों के मामले की जांच में सामने आया है कि हमले के पीछे कोई देश हो सकता है। हालांकि जांच में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमरीका इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप लगाता रहा है। फलिस्तीन के मंत्रियों की तनख्वाह चुपके से 67% बढ़ाए जाने की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फलिस्तीन सरकार के कैबिनेट की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी तयशुदा समय यानी कि 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें। नमस्कार।